ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाषा, साहित्य, कला और आध्यात्मिकता जैसे सांस्कृतिक स्तंभ किसी भी देश की पहचान है। उन्होंने कहा कि आज विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे देश की जड़ें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्वाभिमान से गहरी जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आज अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख किया। श्री मोदी ने विश्व से समस्याओं का समाधान युद्ध में ढूंढने की जगह भगवान बुद्ध की शांति के मार्ग की शिक्षाओं में ढूंढने की अपील की। श्री मोदी ने पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के सरकार के निर्णय पर कहा कि भाषाएं केवल वार्तालाप का माध्यम नहीं है बल्कि सभ्यता और संस्कृति की आत्मा भी है। कनाडा सरकार के भारतीय राजनयिकों पर आरोपों को भारत ने बेबुनियाद बताते हुए अस्वीकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कनाडा ने भारत और उसके राजनयिकों के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों के समर्थन में अभी तक कोई सबूत नहीं दिया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ये दावे ट्रूडो सरकार के भारत की प्रतिष्ठा धूमिल करने के राजनीति से प्रेरित प्रयास का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन चंडीगढ़ में जारी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री नायब सिंह के साथ 13 विधायकों ने भी कैबिनेट और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायब सिंह सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने राज्य मंत्रिमंडल को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन और अनुभव का संगम है जो हरियाणा के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और मलावी के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं। मलावी के लिलोंगवे में भारत मलावी व्यापार सम्मेलन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत 1964 में मलावी की स्वतंत्रता के तुरंत बाद उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। इससे पहले राष्ट्रपति 3 अफ्रीकी देशों की सप्ताह भर की यात्रा के अंतिम चरण में मलावी पहुंची। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 13 अक्टूबर को बहराइच जिले में एक युवक की हत्या के मामले में आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में दर्ज प्राथमिकी में 3 आरोपियों मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद फहीम और अब्दुल हामिद का उल्लेख किया गया था। मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालीम को नेपाल सीमा के निकट नानपारा इलाके में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था। बिहार के सीवान और सारण जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 25 हो गई है। संदिग्ध जहरीली शराब पीने से पिछले 24 घंटे में सीवान में 20 और सारण में 5 लोगों की मौत हो गई। घटना की जांच के लिए एक विशेष दल का गठन किया गया है। सरकार ने रेलगाड़ियों में अग्रिम आरक्षण की वर्तमान समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन करने का निर्णय लिया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि नया नियम 1 नवंबर से लागू होगा लेकिन 31 अक्टूबर तक की सभी बुकिंग बरकरार रहेंगी। सरकार ने दीपावली से पहले प्याज की मांग पूरी करने के लिए आज नाशिक से दिल्ली के लिए कांदा एक्सप्रेस रेलगाड़ी रवाना की। उपभोक्ता कार्य सचिव निधि खरे ने बताया कि ये विशेष रेलगाड़ी 1600 मीट्रिक टन प्याज लेकर 20 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की हान यू को हराया। निशानेबाजी विश्व कप फाइनल में भारत के विवान कपूर ने ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। इससे पहले अनंत जीत सिंह ने पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता में भारत 2 रजत और 2 कांस्य के साथ 9वें स्थान पर है। चीन कुल 8 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर है। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।